تفسیر سورة طه آیت نمبر 41. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے اور میں نے تم کو اپنے لیے بنایا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے آیت نمبر 40 کو آپ دیکھیں جو پچھلی آیت ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ پر کیا کیا احسانات کیے، کہ یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا. تو پھر ایک فکرے میں کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا. فتون جو ہے یہ مصدر کی طرح ہے جس کے معنی ہے کہ ہم نے تجھے خوب آزمایا. ابْتَلَيْنَاكَ ابتلاءً، اور معنی ہے کہ تجھے بار بار آزمایا، کئی مرتبہ آزمایا. مثلا جو سال بچوں کے قتل کا تھا تجھے پیدا کیا، تیری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر دیا کہ کہیں تجھے فرعون کے پولیس کے لوگ آ کر قتل نہ کر دیں. پھر تمام جو دودھ پلانے والی تھی ان کا دودھ تجھ پر حرام کر دیا. تُو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کیا تھا. تیرے ہاتھوں فرعونیوں میں سے قبطی جو تھا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا. پھر تو اپنی جان کے خوف سے جو ہے وہ مصر چھوڑ کر بھاگ نکلا. پھر مدین کا سفر، پھر وہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، تو مسافر تھا، بڑی مشکل میں تھا. اور ان تمام آزمائشوں میں ہم تیری مدد کرتے رہے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے مختلف آزمائشوں میں سے گزارا. اب آپ دیکھیں کہ آزمائش جو ہے کیا ہے، دراصل امتحان ہے. اور امتحان جو ہیں یہ تربیت کا ذریعہ ہوتے ہیں. فطری سی بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی تربیت سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ امتحان تو آئے گا. جہاں ایمان ہے وہاں امتحان ہے. اور یہ جو آزمائشیں ہیں یا جو بھی امتحان ہیں، یہ صرف مشکلات اور مصیبتوں ہی کی راہ میں پیش نہیں آتے. جیسے کسی کو بیماری آ گئی، یا معاشی مسئلہ ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا اولاد تنگ کر رہی ہے، یا ویسے کسی بھی لحاظ سے. یعنی امتحان جو ہے یہ صرف مصیبت کے لیے نہیں ہے. اگر مصیبت کے لیے ہے تو اللہ بندے کے صبر کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اور اگر امتحان جو ہے وہ دولت، نعمت، سہولت، آسائشوں کی شکل میں ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کے شکر کا امتحان لیتا ہے. صبر اور شکر کے امتحانوں میں سب سے زیادہ مشکل کون سا امتحان ہے، صبر کا یا شکر کا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ صبر کا امتحان جو ہے اس کی نسبت شکر کا امتحان زیادہ مشکل ہے. اس میں پاس ہونے والوں کا اوسط جو ہے، پرسنٹیج جو ہے، بہت کم ہے. کیونکہ عام طور پر جب دکھ ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مصیبتوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، لیکن نعمتیں پا کر بہکنے والے جو ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں. بہت کم ہیں جو نعمتیں پا کر شکر گزار ہوتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، سورت سبا کی آیت 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں कि मेरे बहुत थोड़े बंदे हैं जो कि शुक्र अदा करते हैं। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि इम्तहान जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें किसी इम्तहान में ना डाले, लेकिन अगर किसी कोई इम्तहान पेश आ जाए मुसीबत का हो तो अल्लाह सब्र दे, इस्तकामत दे, और जब नेमतों से नवाजा जाए तो फिर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शुक्र गुजार बंदों में शामिल करे, ना ये कि नेमते पाकर इंसान जो है वो अपने जामे से बाहर निकले, बहकने लगे, अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। तो असल डरने की बात जो है वो ये नहीं है कि इम्तहान पेश आ गया है या इम्तहान आएगा या इम्तहान होगा, असल डरने की बात ये है कि कहीं मैं इम्तहान में फेल ना हो जाऊं। और जो अल्लाह के दिए हुए इम्तहान में फेल होता है, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सख्त सजा देता है, उसके लिए उम्मीद के सारे दरवाजे जो है वो बंद हो जाते हैं। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं वफतन्ना का फुतूना, और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा। आपकी जिंदगी में भी बहुत सी आजमाइशें आती हैं, आप खुद सवाल करती हैं, आप पूछती हैं कि क्यों मुझ पर इतनी आजमाइशें आती हैं, ये ऐसी अजीब सी बीमारी मुझे क्यों लग गई है, मेरा ही घर में ऐसे मसाइल क्यों हैं, मेरे ही बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, या मेरी बीवी ऐसे क्यों करती है, या मेरा शौहर ऐसे क्यों करता है, और मेरे साथ क्यों। तो तुंदिये बादे मुखालिफ से न घबरा ए इकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब मुख्तलिफ इम्तहानों से गुजारा और फरमाया फलबिस्त सनीन फी अहले मदियन, और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा, तुम मजेता अला कदरी या मूसा, फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है ए मूसा। हम आप देखें कि जा आ का मतलब होता है कि आना, और यहां पर जेता लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जेता कि तू आया, अला कदरिन यहाँ पे जो है वो कदर का लफ्ज है। मुफसरीन कहते हैं कि कदर से मुराद उमर है, यानी तू उमर के इस मरहले में आया जो नबूवत के लिए मुनासिब है, यानी 40 साल की उम्र में जो है तू आया। तो वो वक्त जो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें नबूवत अता करनी थी, अपने से हम कलामी नसीब करनी थी, तो ऐसे मुनासिब वक्त पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो मदियन से निकलकर मिस्र की तरफ जो है वो रवाना हुए। फिर इसके बाद फरमाया वस्तनातुका ये नफ्सी, कि मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। अब आप देखिए कि ये लफ्ज जो है ये चुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चुनने के लिए कुरान में 5 लफ्ज आए हैं। पहला इख्तार का है, सूरत आराफ में आप पढ़ चुकी हैं। दूसरा इस्तफा का है, आप सूरत आल इमरान में पढ़ चुकी हैं, इन्नल्लाह इस्तफा। तीसरा जो है वो इज्तबा का है, ये अभी आपने पिछले सबक में भी पढ़ा था। और चौथा जो है वो इस्तखलसा का है, ये भी, ये दोनों लफ्ज आपने इज्तबा का और इस्तखलसा का सूरत मरियम में पढ़े थे। और पांचवा और आखिरी दर्जा जो चुनने का है वो इस्तना का है, इसका रूट है स्वाद नून आइन। इसके मानी है किसी चीज को फनी महारत से बनाना, और जब इसमें तोए भी आ जाए और अलिफ का भी इजाफा हो जाए तो मानी है किसी खास मकसद के लिए किसी मौजू शख्स का इंतखाब करके उसकी खास तौर से तरबियत करना, किसी को किसी खास मकसद के लिए तरबियत देना, ट्रेनिंग देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि पैगंबर बनाए जाने वाले थे, तो अल्लाह ताला ने उनको इस खास मकसद के लिए खास तौर पर आजमाइशों से गुजारा, और जब वो नबूवत के लिए जो है वो तैयार हो गए, उनका तस्किया हो गया, उनकी तरबियत हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो है वो पैगंबरी के लिए चुन लिया। तो तुम्हें जो इतने इम्तहानों से गुजारा, तुम्हें जो इतनी भट्टियों में तपाया, तुम्हें जो इतनी आजमाइशों में डाला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो दरअसल ये पैगंबरी के लिए तेरी तरबियत की। अब मैं वो खास काम तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं ताकि तुम पैगंबरी की जिम्मेदारी जो है, नबूवत की जिम्मेदारी जो है, तुम उसको उठा सको और मेरे काम को लेकर आगे बढ़ो। वस्तनातु कली नफ्सी, मैंने तुझे अपने काम का बना लिया है। इज़हब अंत व अखू का भी आयाती वला तनिया फी जिक्री। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो दो हुक्म दिए हैं। पहला ये, इज़हब जा, अंता तू व अखू का और तेरा भाई, कि तू और तेरा भाई, भाई से मुराद हारून अलैहिस्सलाम है, कि दोनों जाएं किसके साथ, भी आयाती मेरी निशानियों के साथ। अब ये नहीं फरमाया कि जो है वो कोई लाओ लश्कर लेकर या असलहा लेकर या किसी और तरीके से जाकर डराना है, बल्कि कहा कि मेरी निशानियां लेकर जो है आप दोनों भाई जाएं। और यहां पर जो है वो दो निशानियां क्या हैं, ये निशानियों का जो जिक्र है क्या है, इससे मुराद जो है वो मोजात हैं, वो दो जो पीछे असा और यदे बैजा का जिक्र आपने पढ़ा था। फिर दूसरा हुक्म दिया, वला तनिया फी जिक्री, फरमाया कि मेरी और सुस्ती ना करना मेरी याद में। तनिया, तनिया का जो लफ्ज है इसका रूट है नून, नून के साथ अलिफ लिखें और उस पर हमजा डाल दें, नून हमजा या, और इसके मानी है दूर होना, सुस्ती करना, गफलत करना। वला तनिया फी जिक्री, और मेरी याद में सुस्ती न करना। के अब याद से मुराद क्या है, कि जब जो है वो मेरी याद का वक्त हो तो उसे भूलना नहीं है। और याद से मुराद मुफस्सरीन कहते हैं कि तबलीग का काम भी है, जो काम देकर उन्हें भेजा जा रहा था। तो बात जिक्र की हो, इबादत की हो या दावते दीन की हो, तो मुझे भूलना नहीं है, क्योंकि नबी का काम जो है वो अल्लाह का जिक्र होता है, ख्वाह वो लोगों को दावत देना हो या फिर ये कि नमाज पढ़ना हो या अल्लाह का जिक्र करना हो। क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो है ये नबुवत के लिए और ईमान के लिए ये काम जो है ये कुव्वत का है। दावत हक का जो असल सरचश्मा है ये अल्लाह ताला है, और दाई को इसी सरचश्मे से, इसी सेंटर से गिजा और कुव्वत मिलती है। और अगर जो दाई है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दायाना काम के लिए अब निकल रहे हैं, तो अगर इनका असल सेंटर से ताल्लुक कमजोर हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक कमजोर हो जाए, तो दावत बेजान हो जाएगी, बेरूह हो जाएगी, फिर दावत बिल्कुल शैतानी दावत बनकर रह जाएगी। तो इसलिए कहा कि जब ये काम करो, वला तनिया फी जिक्री, और तनियान था, ये तस्निया का सीगा है, नून गिर चुका है, और तुम दोनों मेरी याद में गफलत ना बरतना, मुझे याद करना। इज़हबा, तुम दोनों जाओ, यहाँ पे भी इज़हबान था, नून तस्निया का गिर चुका है, तुम दोनों जाओ। इला फिरौना, फिरौन की तरफ, इन्नहु तगा, कि वो सरकिश हो गया है। अब यहां पर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजे जाने का मकसद बताया जा रहा है, कि मकसद ये है कि वो तुगयानी में है, सरकशी में है। और फिरौन के अंदर दो बातें खास तौर पर पाई जा रही थी, एक अल्लाह के हुकूक के अंदर वो तुगयानी दिखा रहा था। उसने क्या किया था, ना सिर्फ ये कि वो अल्लाह का मुनकिर था, बल्कि उसने जो है वो खुदाई का दावा किया था। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत नाजियात में फिरौन का ये कौल नकल किया है, फिरौन ने कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, कि ए अहले मिस्र, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं। सूरत जुखरुफ में वो अपने दरबारियों को, जब दरबारी जो है वो दरबार भरा हुआ है दरबारियों से, तो उनको मुखातिब करके कहता है, या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्रा व हाजिल अनहारू तजरी मिन तहती, कि ए कौम, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही। सूरत जुखरुफ आयत 51। फिर इसी तरह उसने जो है सूरत कसस में आयत 38 में भी जो है कहा कि ए कौम के सरदारों, मैं नहीं जानता कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई और इलाह भी है। या अय्युहल मलाउ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, फिर सूरह शोरा आयत 29-29 में भी उसने कहा ला इन इत्तखजता इलाहन गैरी लअजअलन्नका मिनल मसजूनीन, कि अगर तूने मेरे सिवा किसी को इलाह बनाया तो याद रख कि तुझे जेल में भेज दूंगा। तो यहां पर भी बताया जा रहा है कि उसने सरकशी दिखाई। तो सरकशी में आपने पहली बात ये याद रखनी है कि उसने अल्लाह के हक में सरकशी दिखाई, कि अल्लाह की इबादत का इनकार किया, और जो है उसने कहा कि मैं फिरौन का जो है, फिरौन ने कहा कि मैं मिस्र का सबसे बड़ा रब हूं। सूरज देवता जो है उसका वो अवतार समझा जाता था, और इस तरह उसने शिर्क किया। और दूसरी उसकी सरकशी और तुगयानी क्या थी कि वो लोगों को जो है वो उन पर जुल्म करता था, उन पर अपने हुक्म चलाता था, अपनी मर्जी करता था, और उसने अल्लाह के जमीन को जुल्म से भर रखा था। आयत नंबर 44 सूरत ताहा, फकूला, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि पस तुम दोनों कहो, फकुलान था, कुल वाहिद होता है, कुला दो को कहते हैं कि तुम दोनों बात करो, फकुलान पस तुम दोनों बात करो, कौन मुराद है, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, पस तुम दोनों कहो लहू फिरौन को कैसे, कौलन लय्यिनन नरम बात। ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबरों को जो फिरौन के पास गए हैं उनको ये हुक्म दिया कि जब तुम फिरौन से बात करना तो नरम बात करना। लय्यिनन जो है लाम या नून इसका रूट है और नरमी के लिए आता है। लिंता आप सूरत आल इमरान में लफ्ज पढ़ चुकी हैं, जब आपने गज़वाए उहद पर तबसरा पढ़ा था, कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोगों के लिए जो है वो नरम खून है, वहां आपने लिंता पढ़ा था, यहाँ पे लय्यिनन है। तो लय्यिनन जो है वो नरमी के लिए आता है। फरमाया कि तुम जो है फिरौन से दोनों नरमी के साथ बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले, औ यख्शा या कि वो डर जाए। अब आप इस बात को आप नोट करें कि बहुत से लोग अमली जिंदगी में जब दावा में एक्टिव होते हैं या दावा करना चाहते हैं तो वो नरमी की बजाय सख्ती का रवैया अख्तियार करते हैं। वो कहते हैं कि सख्ती से जो है वो ज्यादा अच्छे असरात आते हैं। याद रखें कि सख्ती जो है वो तबीयतों और मिजाज के अंदर नरमी नहीं पैदा करती, उनको झुकाती नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो चीज सख्ती से टूट जाए, स्कैटर्ड हो जाए, बिखर जाए, लेकिन उसके अंदर झुकाव पैदा नहीं होता, उसके अंदर अतात पैदा नहीं होती, और दिल दावत के लिए नरम नहीं होते, सीने खुलते नहीं हैं। इंसान जो है वो दावा कबूल करने के लिए, दावत को कबूल करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता। तो जो नरमी होती है, नरमी से पत्थर जैसा इंसान जो है वो भी पिघल जाता है। तो कोई भी शख्स जो है वो कितना ही जालिम क्यों ना हो, कितना ही सरकश क्यों ना हो, वो ख्वाब वो अपने कुफर और सरकशी में फिरौन जैसा ही क्यों ना हो, और दाई जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा अजीम पैगंबर क्यों ना हो, हजरत हारून अलैहिस्सलाम जैसा जो है वो पैगंबर क्यों ना हो, लेकिन उनको भी ये नसीहत की जा रही है कि जब आप बात करें तो नरमी से करें। तो दावा का बेस्ट टूल जो है वो नरमी है, और हमें भी अल्लाह ताला से नरमी की दुआ करनी चाहिए। वकूलु लिन्नासि हुस्ना, आप पीछे पढ़ चुकी हैं सूरत अल बकरा में कि लोगों से भली बात करो। फिर आप देखें, आपने सूरत नहल की आखिरी आयतें पढ़ी थी, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ातिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, तो वहां पे भी आपने पढ़ा था कि उम्दा नसीहत अच्छी बात। तो यहाँ पे भी दाई का किरदार क्या है कि नरम बात की जाए। फिर दो बातें सामने रखी हैं कि जब आप नरमी से बात करेंगे तो शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो तज़क्कुर है, तज़कीर याद दहानी, ये गाफिल लोगों को फायदा देती है। गाफिल कौन होते हैं? जो रास्ता भूले हुए होते हैं। तो नबी की तज़कीर से, दाई की तज़कीर से वो गाफिल जो हैं वो गफलत से बेदार होते हैं और रास्ता पा लेते हैं। और ये जो खशियत है, यक्षा, ये जो डर है, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो गाफिल की बजाय गुमराह ज्यादा होते हैं। इनकी गुमराही कुछ पुख्ता होती है, लेकिन अगर इन लोगों के दिल के अंदर भी कबूलियत हक की कुछ सलाहियत पाई जाती है, तो जब नबी उनको डराता है जहन्नुम से, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से, तो ये जो है फिर इस मसले पर संजीदगी से गौर करने लगते हैं। तो इन्हें भी अल्लाह की तौफीक मिल जाती है, हदायत की रास्ता जो है ये इख्तियार कर लेते हैं। तो तज़क्कुर गफलत से बेदारी का जरिया है, और खशियत, ये जो डरावा है, ये गुमराह लोगों के लिए बेहतरीन टूल है। तो यहाँ पे किसी आदमी के राह रास्त पर आने की दो शर्तें सामने रखी जा रही हैं। नंबर एक, समझा कर तज़कीर के जरिए उसको मुतमिन कर लिया जाए, और या फिर बुरे अंजाम से डराकर उसके अंदर खशियत पैदा की जाए। आयत नंबर 45 में जो है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो है इनका रद्द अमल सामने आता है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहते हैं कौला। अब यहाँ पे भी कौलान था, नून तस्निया का गिर चुका है। वो दोनों बोले रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, इन्ना नखाफू, बेशक हमें अंदेशा है, बेशक हम डरते हैं, अई यफ्रुता अलैना, कि वो हम पर ज्यादती करेगा, ओ अई यतगा, या वो ज्यादा सरकिश हो जाए, या वो हम पर टूट पड़े। अब आप देखें कि ये जो अई यफ्रुता जो है, फा र त, तो ये जो है ये इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं ज्यादती करना। ये जबील अजदाद में से है, ये हद से बढ़ने के लिए भी आता है और किसी चीज में कमी करने के लिए भी आता है। अफरात तफरीत है ना, अफरात आगे बढ़ जाना, तफरीत कमी करना। लेकिन जब इसके साथ अला की प्रेपोजिशन आ जाए, आपको नजर आ रही है सबको ये सूरत त्वाहा की आयत 45 को आप देखिए, अय यफ्रुत अलैना, तो अला की जो प्रेपोजिशन है इसको अला का सिला भी कहते हैं, अला हरफे जर भी कहते हैं इसको। तो जब जो है फारा त्वा के साथ अला आ जाए, तो इसके मानी होते हैं किसी के खिलाफ आजिलाना इकदाम, किसी के खिलाफ उजलत से जल्दी से कोई कदम उठाया जाए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमारे परवरदिगार, हमें तो ये अंदेशा है, हमें तो ये खौफ है कि कहीं फिरौन जो है, जो पहले गुस्से से भरा बैठा है, भला वो हमें जबान खोलने की कहाँ इजाजत देगा? वो हमारी बात को कैसे सुनेगा? वो तो सुनने से पहले ही हमें खत्म करने की तदबीर करेगा। अय यफ्रुत अलैना, के हमारी बात सुनने से पहले ही, क्योंकि वो गुस्से में है, तो हमें देखते ही खत्म कर देगा। और अय यतगा, इसके मानी है कि उसकी सरकशी और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और तुगयानी पर उतर आएगा। कौला ला तखाफा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम को तसल्ली दी है। तखाफान जो है ये तस्निये का सीगा है, और नून जो है ये यहां से गिर चुका है। किला तखाफा, कि तुम दोनों जो है मत डरो, इन्नानी माकुमा अस्माउ व अरा, मैं तुम दोनों के साथ हूं। इन्नानी माकुमा, ये नहीं कहा कि एक के साथ हूं, दोनों के साथ हूं, तुम मेरी मैयत में हो, तुम मेरी निगरानी में हो, तुम मेरी हिफाजत में हो। तो कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बेशक तुम दोनों के साथ हूं। अस्माउ व अरा, मैं सब कुछ सुन रहा हूं और देख रहा हूं। इसके मानी क्या है? मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को जो है वो तसल्ली दी है और फरमाया है कि आप जो है परेशान ना हो, क्योंकि मैं जो खालिक हूं, मालिक हूं, हाकिम हूं और सुल्तान हूं, जलील हूं, तुम्हें मेरी तरफ से तहफुज और जमानत हासिल है। मैं सुनता हूं और देखता हूं से मुराद क्या है, कि तुम जो जाके दावा करोगे और वो जो जवाब देगा, तुम जब उनके सामने जाओगे फिरौन के सामने, और जो उसका रिएक्शन होगा, सब कुछ मेरी नजरों में है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये वही बात है जो गारे सौर में थे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो, तो उस वक्त भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला तहजन इन अल्लाह माना, अबू बकर गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। तो प्यारी बहनों, जब इंसान अल्लाह के लिए निकलता है, अल्लाह के रास्ते में निकलता है और वो मुखलिस होता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो गैब से उसकी जो है वो मदद करते हैं। तो यहां पर भी जो अहम बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तसल्ली दे रहे हैं कि मैं फिरौन की चालों को नाकाम कर दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जरूरी है ये बात कि हमें इस बात का यकीन हो कि अगर मैं हक पर हूं, अगर मैं सच पर हूं, मैं सही काम कर रही हूं, तो फिर अल्लाह मेरे साथ है। और जब अल्लाह मेरे साथ है तो फिर मुझे क्या गम है। यानी अगर सारी खुदाई भी दुश्मन बन जाए तो किस बात का डर, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। आयत नंबर 47 फरमाया फातियाहू, इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि बस जाओ इसके पास, फातियाहू बस जाओ, तुम दोनों इसके पास जो है वो जाओ। फा जो है यानी बस, जैसे किसी बात को खत्म किया जाए कि देन या पस के बस, यानी तुम दोनों जाओ। हु उसके पास, फिरौन के पास, फकूला फिर तुम दोनों उसे कहो इन्ना रसूला रब्बी का, कि बेशक हम दोनों रसूल हैं। अब यहां पे भी रसूल नान था, तस्निया का नून गिर चुका है, तस्निया दो को कहते हैं, कि तुम जाकर कहना कि हम दोनों जो हैं वो रसूल हैं रब्बी का, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, कि तुम्हारे रब के भेजे हुए रसूल हैं। अब वो बता रहे हैं कि आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि फिरौन को जाकर बताना कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए भेजा है। नंबर एक, फअरसिल माना बनी इसराइल, बस भेज दे मेरे साथ बनी इसराइल को, क्योंकि बनी इसराइल को फिरौन ने गुलाम बना रखा था और इंसान तो इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। तो यहां पर जो है उसका मकसद बताया जा रहा है कि बनी इसराइल जो है उसको मेरे साथ भेज दे। बनी इसराइल जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत पे मिस्र आए थे, कहाँ रहने वाले थे, ये शाम के इलाके में रहने वाले थे। मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में, जब मिस्र में जो है वो कहत का जमाना था, इर्द गिर्द शाम में भी कहत आ चुका था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना अपने भाइयों को कि जाइए और अपने वालिदैन को भी लेकर आइए। तो फिर ये मिस्र में आ गए और मिस्र में इन्होंने इक्तदार किया, काफी साल हुकूमत की, लेकिन बाद में बनी इसराइल जो थे इन पे जवाल आ गया, इनके अंदर शिर्क और बुराइयां जब फैल गई तो इनका इक्तदार भी इनसे छिन गया और आले फिरौन ने हुकूमत पर कब्जा करके बनी इसराइल पर जुल्म सितम करना शुरू किया, इनके लड़कों को कत्ल करना शुरू किया, इनकी लौंडियों को गुलाम बना लिया। तो अब बनी इसराइल जो है गुलाम कौम है, मजलूम है, तो कहा कि जाके कहना कि बनी इसराइल को जो है हमारे साथ जो है वो भेज दे। नंबर दो, वला तुअज़्ज़िबहुम, और इनको तकलीफ ना दे, इन्हें अजाब ना दे। फिर इसके बाद जो है तीसरी बात जो है ये कहना कि कज्जे ना कभी ए यतिम मिन रब्बिक, कि हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं, तो हमारे पास जो है तेरे रब की तरफ से जो है वो निशानी है। तो यहां पर जो है क्या निशानी है, यानी वो अपनी नबूवत का की निशानी लाए थे, मौजा लाए थे, वो यदे बैजा और असा जो थी। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, ये खास तौर पर गौर तलब आयत का हिस्सा है जो उन्होंने चौथी बात कही कि वस्सलामु और सलामती है हर उसके लिए जो हदायत की पैरवी करे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, कि जो पैरवी करे हदायत की। इससे क्या बात पता चलती है कि वो शख्स अजाबे इलाही से बचेगा जो के सीधी राह पर जो है वो चलेगा। तो यहां पे जो सलामती है ये मशरूत है। अब आप देखें, जैसे رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرکل کے نام خط لکھا تھا تو آپ نے کہا تھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے. تو اسی طرح جو ہے وہ خط کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ والسلام علی من اتبع الہدى، کہ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. تو کسی غیر مسلم کو یا کسی ایسی محفل میں جہاں غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں اگر سلام کہنا ہو تو مشروط کہنا چاہیے. مشروط کس سے ہوگا سلام؟ ہدایت کے ساتھ، کہ جو ہدایت اختیار کر لے تو اس کے لیے السلام علیکم ہے، والسلام علی من اتبع الہدى. تو یہاں پہ بھی یہی بات ان کو بتائی گئی کہ آپ کہنا اور جو ہدایت کی بات مانے اس کے لیے سلامتی ہے. پھر آیت نمبر 48 ہے، اس میں جو ہے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انا قد اوہیا الینا، کہ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ عذاب کا ڈراوا ہے، پیچھے ہدایت کی خوشخبری تھی، سلامتی تھی کس کے لیے؟ جو ہدایت اختیار کریں. یہاں پہ عذاب کا ڈراوا ہے کس کے لیے؟ جو جھٹلائے، انکار کرے. وتولی اور منہ موڑ لے، تو پہلا درجہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ جھٹلا دینا، اور دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ پھر پیٹ موڑنا، پھر جو ہے وہ منہ موڑ لینا. قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، اب فرعون نے یہ ساری باتیں جب سنی موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی، اب یہاں پر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا آیت نمبر 42 سے لے کر 48 تک، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت کی ہے کہ کیسے فرعون کے پاس جانا ہے اور کیا کیا کہنا ہے، اور ان کا بھی یہ جواب کہ ہمیں جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جا چکے ہیں، ان کو دعوت دی ہے، اور فرعون جو ہے کیا کہتا ہے، فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ اور پھر ہارون تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ ربو کما، یا یہاں پہ کما کی ضمیر دو کے لیے آئی ہے نا، کہ تم دونوں کا پروردگار اے موسیٰ کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رب تو وہ ہے، ربنا ہمارا رب ہے، الذي، وہ جس نے، اعطى كل شيء، عطا کیا، بخشا ہر چیز کو، خلقہ ہو اس کی ساخت، ثم ہدا پھر اس کو راستہ بتایا. یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ بڑا ہی جامع ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام کی جب رہنمائی کی، موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب بناوٹ عطا کی، جو چیز بھی بنائی اللہ کے بنانے سے بنی، اس کو جو شکل، جو قوت، جو صلاحیت، صفت اور خاصیت ملی وہ بھی اللہ کا عطیہ اور بخشش ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، ہر چیز کو جو اللہ نے خاص شکل عطا کی ہے اور وہ کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک ٹھیک انجام دے رہی ہے، تو خود بخود نہیں بنی، خالق ان سب کا اللہ ہے. تو صرف اللہ خالق ہی نہیں ہے بلکہ ثم ہدا، پھر اس نے رہنمائی بھی کی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ مچھلی جو ہے اس کو تیرنا اللہ نے سکھایا، چڑیا کو اڑنا اللہ نے سکھایا، درخت کو پھل اور پھول دینے کی تعلیم اللہ نے دی ہے، زمین کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ اس سے نباتات جو ہے وہ اگتی ہے، بارش کا کام ہے بہنا اور سب کو سیراب کرنا، یہ کس نے بتایا؟ ہادی اللہ ہے. اور اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، کس نے تعلیم دی؟ اللہ نے تعلیم جو ہے وہ دی ہے. تو इंसान के कान सुनते हैं, जबान बोलती है, आंखें देखती हैं, दिल, फेफड़े, मैदा, जिगर, हर जिस्म का हिस्सा जो है वो अल्लाह की दी हुई हदायत के मुताबिक काम करता चला जाता है। तो आयत नंबर 50 का निचोड़ क्या है कि खालिक भी अल्लाह, हादी भी अल्लाह और मुअल्लिम भी अल्लाह। रब्बुनल्लज़ी अअ्ता कुल्ल शैइन खल्क़ सुम्मा हदा, फिर उसको रास्ता बताया। अब फिरौन बोला, काला फमा बालुल कुरूनिल उला। अब फिरौन ने एक बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा कि और जो पहले नसरें गुजर चुकी हैं, फिर इनकी क्या हालत थी? फिरौन ने बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा कि और पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं, इनकी फिर क्या हालत थी? ये जो बाल है ना, बाल, इसका रूट है बा वौलाम, और ये लफ्ज जो है ये हाल, हालत के लिए इस्तेमाल होता है। फिरौन ने पूछा कि कुरून कर्न वाहिद है, कुरून उसकी जमा है। तो फिरौन ने पूछा, जो पहली करने यानी जमाते थी या पहले जो हमारे अबाओ अजदाद थे, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अल उला जो है अव्वल होता है ना, पहले को कहते हैं, और अल उला जो है वही मुअन्नस है। तो मुफस्सरीन कहते हैं, क्योंकि फिरौन के जो अबाओ अजदाद थे वो नस्ल दर नस्ल से शिर्क कर रहे थे, इसलिए फिरौन ने पूछा कि तुम्हारी हमारे अबाओ अजदाद के बारे में क्या राय है? तुम क्या समझते हो कि वो क्या सब गुमराह थे? क्या वो सब अजाब के मुस्तहिक थे? क्या उनकी अकलें मारी गई थी? तो फिरौन जो है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मेरा रब तो वो है कि जिसने अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, जब ये कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह है मेरा रब, तो फिरौन इस पर झुंझला गया और पूछने लगा कि वो पहले जो लोग हैं इनके बारे में फिर तुम्हारी क्या राय है? आला इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसका इल्म रब के पास एक किताब में महफूज है, लोहे महफूज में महफूज है, और उनके बारे में कि वो उनकी हैसियत क्या है, उनका अंजाम क्या होगा, तो ये जो है ये अल्लाह को पता है। मुफस्सरीन कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत मुख्तसिर लेकिन बड़ा ही जामे जवाब दिया, क्योंकि ये जो थी ये फिरौन की एक चाल थी, और अगर मूसा अलैहिस्सलाम जो है इनके अबाओ अजदाद के बारे में ये कह देते कि वो सारे जहन्नमी हैं, क्योंकि वो मुशरिक हैं तो सारे जहन्नमी हैं, तो क्या होता कि वहां पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के खिलाफ, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के खिलाफ एक तासुब की आग भड़क उठती। और जाहिल हमेशा क्या करते हैं, दाई को मुश्तइल करना चाहते हैं, या दाई के लिए इर्द गिर्द का माहौल जो है उसको खराब करना चाहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ये फिरौन की मकारी थी, और फिरौन ये चाहता था कि पूरी कौम के दिलों में तासुब की आग भड़काए। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये कह देते कि वो सब जाहिल थे, गुमराह थे, मुशरिक थे, सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, गो के ये हक गोई का बहुत बड़ा जबरदस्त सबूत होता, लेकिन अब क्या होता कि लोग समझते ही नहीं, और बस हर तरफ जो है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोग जो है वो उठ खड़े होते कि हमारे अबाउ अजदाद के लिए ये जहन्नुम की बात कर रहे हैं या उनके लिए जहालत की बात कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा कि वो नेक हैं, ये भी नहीं कहा, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की, बड़ा हकीमाना उन्होंने जवाब दिया। तो ये है हिकमते तबलीग का बेहतरीन सबक कि गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, और बेहतरीन क्या है कि कमाल दनाई के साथ ये जवाब दिया, और जो सच था, फिरौन के जहरीले दांत भी तोड़े, और साथ ही फरमाया कि उनका जो इल्म है मेरे रब की किताब में महफूज है। किताब से मुराद क्या है? ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये वो किताब है जो पीछे आप सूरत कहाफ में पढ़ चुकी हैं कि मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, यानी जिसमें हर शख्स का किया धरा जो है महफूज है, जो अल्लाह ने कौमों का रिकॉर्ड तैयार कर रखा है, लोहे महफूज है, अजीम दफ्तर है। ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब जो है ना चूकता है, मेरा रब जो है ना चूकता है और ना ही वो भूलता है। तो यहां पर ये जो लफ्ज है कि यदिल्लु, तो इसके मानी क्या है कि मेरा रब जो है ऐसा नहीं है कि कोई बात हो और मेरा जो रब है उसके बारे में वो भूल जाए या उसको वो बात जो है वो याद ही ना रहे। तो यदिल्लु का लफ्ज यहाँ पे गलती के मानी में आया है कि मेरा रब जो है वो गलती नहीं करता, उसकी नजर से कोई छोटी बड़ी चीज जो है वो ओझल नहीं है, वो भूलता नहीं है, उसका इल्म जो है वो इल्मे कुल है। जैसे इंसान जो है वो तो भूल जाता है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो भूलते नहीं है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है नक से जो है वो पाक है। आप आयतल कुर्सी में भी ये बात जो है वो पढ़ चुकी हैं कि इंसान के अंदर जो कमी कमजोरी पाई जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उससे पाक है। ना उन्हें नींद आती है, ना उन्हें ऊंग आती है, और उनका इल्म जो है वो इल्मे कुल है। या लमुमा बैन अईदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। तो यहां पर भी जो है इसकी तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है आयत नंबर 53 में चार बातें सामने रखी हैं। बड़ा जबरदस्त अल्लाह ताला का तारुफ करवा रहे हैं। पहली बात ये कही कि वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फरश बनाया। महदन जो है, महद का जो लफ्ज है ये माँ की गोद के लिए भी इस्तेमाल होता है कि बच्चा जो है उसमें पलता है, सुकून हासिल करता है, जवान होता है। तो इसी तरह जमीन जो है वो इंसान के लिए फरश की हैसियत रखती है। आप देखें कि इंसान जमीन को खोदता है, घर बनाता है, उसमें नहरें जारी करता है, दरख्त लगाता है, भागता है, दौड़ता है, क्या कुछ नहीं इंसान जो है वो जमीन पर करता। तो अल्लाह ताला ने जमीन को फर्श की तरह बनाया है। तो पहली बात जाला लकुमुल अर्दा महदा, कि उसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया कि तुम जमीन पर आराम करते हो, आराम से रहते हो। दूसरी बात वसला का लकुम फीहा सुबुलन, और चलाए तुम्हारे लिए इसमें राहें। तो सला का सीन लाम काफ इसका रूट है और इसके मानी होते हैं चलाना। कुछ लोग सालिका सालिक नाम भी रखते हैं कि इसने तुम्हारे लिए चलाई इसमें राहें, यानी उसमें तुम्हारे लिए चलने को रास्ते बनाए। अब आप देखें कि जमीन पर जो है वो रास्ते बने हुए हैं ना, कि इंसान जो है वो क्या करता है कि तवील सफर करता है और फिर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंच जाता है। तो यहां पर जो है जो ये रास्तों की तरफ इशारा किया गया है, जैसे आप देखें कि पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ों के अंदर भी रास्ते बने हुए होते हैं, फिर इसी तरह समंदरी रास्ते के समंदरों से जहाज और कश्तियां जो है वो गुजरती हैं, फिर इसी तरह ये जो जमीनी इलाके हैं वहां पर जो है वो रास्ते, और रास्ते के लिए क्या है कि निशानियां होती हैं समंदर के अंदर भी, पहाड़ों के अंदर भी और मैदानी इलाकों में भी। तो ये सारा जो निजाम है ये अल्लाह की तौहीद पर दलालत करता है। फिर तीसरी बात वह अनजला मिनस समाई मा, और ऊपर से इसने पानी बरसाया। मा का लफ्ज ये बारिश के लिए आम है, मीम वाओ हा इसका रूट है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो है वो आसमान से बारिश नाजिल की। फिर इसके बाद चौथी बात कही कि फअखरजना बिही अजवाजम मिन नबातिन शत्ता। फिर इस पानी के जरिए मुख्तलिफ अकसाम की पैदावार निकाली। फअखरजना, खरजा होता है निकलना और अखरजा निकालना। फिर इसने निकाली बेही इस पानी के जरिए से अजवाजन। अजवाजन जो है ये जे वो जीम इसका रूट है और इसके दो मानी होते हैं। एक तो होता है जोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, और आपको पता ही है कि पौधों के भी जोड़े होते हैं, और दूसरा ये लफ्ज जो है ये किस्म किस्म के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो फिर इसके मानी क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरह तरह की नबातात को पैदा किया। आप देख लें कि सब्जियां हैं तो तरह तरह की हैं, फ्रूट है, तरह तरह के दरख्त पौधे नबातात जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा की है। और नून बाता नबाता ये हर उगने वाली चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शत्ता शीन ताता इसका रूट है और इसके मानी है जुदा जुदा, तरह तरह की, मुख्तलिफ तरह की। तो शत्ता जो है ये लफ्ज मुख्तलिफ अकसाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो है जो जमीन से बारिश के बाद जो फल फूल पौधे नबातात जो उगाई, तो एक तरह की नहीं है, तरह तरह की है। आप इसकी फैमिली का लफ्ज शत्ता की फैमिली का बताएं। सूरत जिलजाल आपको आती है ना, यौमासु अश्तातली आमालहुम, वहां पे अश्तातन का लफ्ज जो है वो भी इसी रूट का है। तो वहां पे भी ये लफ्ज जो है ये मुख्तलिफ के मानी में इस्तेमाल हुआ है। मुतफर्रिक, टोलियां टोलियां। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की पैदावार जो है वो अल्लाह ताला ने पानी के जरिए जो है वो निकाली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा कुलू वरआउ अनआमकुम। कुलू जो है ये ऑर्डर का सीगा है और इसका रूट है हमजा काफ लाम, इसके मानी होते हैं खाना। कुल काफ दो नुक्ते वाली के साथ कुल जो होता है, जैसे कुल हु अल्लाहु अहद, तो वो तो होता है कहो बोलो, लेकिन कैफ के साथ कुल वाहिद है, कुलू सब खाओ। वर आओ जो है ये लफ्ज जो है ये चरने चुगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।